धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद के एशा यह पंचजनस्य पंचजन की आंगा हे पुत्र दोहिता पुत्री वे निसंदेह प्रजापते अन्य प्रजापति अस्कनी नामा अस्कनी नाम अस्कनी नामक पत्नीत्वे अपनी पत्नी के रूप में प्रजेशा हे प्रजापति प्रतिग्रहयताम स्वीकार करो। मिथुना पुरुष तथा स्त्री का व्यवाया संभोग धर्म जो धार्मिक कृत्य द्वारा स्वीकार करता है। त्वम तुम प्रजा सर्गम जीवों की सृष्टि इमाम यह पुनः फिर मिथुन स्त्री तथा पुरुष के संयोग का व्यवाय धर्मिण्याम संभोग के धार्मिक कृत्य के अनुसार भूरिशा अनेक बार भावयिष्यसि तुम उत्पन्न करोगे। अनुवाद श्लोक संख्या 51। हे पुत्र दक्ष प्रजापति पंजन के अस्कनी नामक पुत्री है जिसे मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ जिससे तुम उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सको। श्लोक संख्या 52। आप पुरुष तथा स्त्री रूप में यौन जीवन में संयुक्त हो और इस तरह संभोग द्वारा तुम इस कन्या के गर्भ में जनसंख्या की वृद्धि करने के लिए सैकड़ों संतानें उत्पन्न कर सकोगे। तात्पर्य भगवत गीता 7:11 भगवान कहते हैं धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि मैं काम हूँ जो धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है। भगवान द्वारा प्रदत्त संभोग धर्म है किंतु इंद्रिय भोग अभिप्सित नहीं है। संभोग द्वारा इंद्रिय भोग में लिप्त रहने की अनुमति वैदिक सिद्धांत नहीं देते। संतान उत्पन्न करने के लिए कोई भी यौन जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति का पालन कर सकता है। इसलिए श्लोक में भगवान ने दक्ष से कहा यह कन्या तुम्हें संतान उत्पन्न करने के लिए केवल यौन जीवन हेतु दी जा रही है किसी अन्य कार्यों के लिए नहीं। यह अत्यंत उर्वर है अतएव तुम जितनी भी संतानें उत्पन्न करना चाहोगे जन्म दे सकोगे। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर टिप्पणी करते हैं कि दक्ष को असीमित संभोग की सुविधा प्रदान की गई थी। अपने पूर्व जीवन में भी दक्ष दक्ष के नाम से ही विख्यात था किंतु यज्ञ संपन्न करते समय उसने शिवजी का अपमान किया था अतएव उसके सर के स्थान पर बकरे का सर लगा दिया गया था। तब दक्ष ने अपनी इस पतित अवस्था के कारण अपना शरीर त्याग दिया किंतु उसमें वह वही असीम यौन इच्छा बनी रही। इसलिए उसने तपस्या की जिससे उसने भगवान को तुष्ट कर लिया जिन्होंने उसे संभोग के लिए असीम शक्ति प्रदान की। यह ध्यान देना होगा कि यद्यपि संभोग की ऐसी सुविधा भगवान की कृपा से प्राप्त की जाती है किंतु यह सुविधा बड़े चढ़े भक्तों को जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहते हैं अन्य अभिलाषितो शून्यम नहीं प्रदान की जाती। इस संबंध में यह ध्यान देना चाहिए कि यदि कृष्णा भावनामृत आंदोलन में लगे अमेरिकी लड़के तथा लड़कियां भगवान की प्रेमा भक्ति के परम लाभ को पाने के लिए कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहते हैं तो उन्हें यौन जीवन की इस सुविधा से लिप्त होने से बचना चाहिए। इसलिए यदि यौन जीवन के लिए अवसर आए भी तो मनुष्य को चाहिए कि एकमात्र संतान के लिए संभोग करने की परिसीमा को स्वेच्छा से स्वीकार करे अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। कर्दम मुनि को भी यौन जीवन की सुविधा प्रदान की गई थी किंतु उन्हें इसकी रंच मात्र ही इच्छा थी। अतएव देवहूति के गर्भ से संतानें उत्पन्न करने के बाद कर्दम मुनि पूर्ण तथा विरक्त हो गए। तात्पर्य यह है कि यदि कोई भगवत धाम वापस जाना चाहता है तो उसे स्वेच्छा से यौन जीवन से बचना चाहिए। यौन को आवश्यकता अनुसार ही स्वीकार करना चाहिए असीमित रूप में नहीं। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि दक्ष ने असीमित यौन की सुविधा पाकर भगवान की कृपा प्राप्त की। अगले श्लोकों में पता चलेगा कि दक्ष ने पुनः अपराध किया। इस बार यह नारद के चरण कमलों पर था। इसलिए यद्यपि यौन जीवन भौतिक जगत का सर्वोच्च भोग है और यद्यपि भगवत कृपा से मनुष्य को यौन सुख का अवसर प्राप्त हो सकता है, किंतु इसमें अपराध करने का खतरा बना रहता है। दक्ष ऐसे अपराधों के लिए उन्मुख था, इसलिए सच सच कहा जाए तो उस पर भगवान की कृपा नहीं थी। मनुष्य को यौन जीवन के लिए असीम शक्ति पाने के लिए भगवान से कृपा की मांग नहीं करनी चाहिए। श्लोक संख्या 53। ततो अदस्तात् प्रजा सर्वा मिथुनो भीमायया मदीयया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिम। अनुवाद। जब तुम लाखों संतानों को जन्म दे चुके होगे तो वे भी मेरी माया द्वारा मुक्त की जाती रहेंगी और तुम्हारी ही तरह संभोग में संलग्न होंगी, किंतु तुम पर और उन पर मेरी कृपा के कारण वे भी मुझे भक्ति की भेंटे प्रदान कर सकेंगी। श्री शुक उवाच। इति युक्ता मिशिष्टस्य भगवान विश्व भावना स्वप्न लोपोद्धार्थ एव तत्रैवान्तदर्धे हरि। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब संपूर्ण ब्रह्मांड के श्रेष्ठा भगवान हरि प्रजापति दक्ष के सामने इस तरह बोल चुके तो वे तुरंत अंतर्ध्यान हो गए, मानो वे स्वप्न के अनुभव में की गई कोई वस्तु रहे हो। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के षष्ठ स्कंद के अंतर्गत प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस कुए प्रार्थनाएं शीर्षक चतुर्थ अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज सुबह की भागवत कक्षा में। तो आज ये अध्याय समाप्त हो रहा है और प्रसंग ये है कि प्रजापति दक्ष जो कि पचेतस के पुत्र हैं, वो विंध्याचल पर्वत पे तपस्या करने गए थे ताकि वो सही जगह सही तरीके से प्रजा की सृष्टि कर सके। उन्होंने हंस कुए प्रार्थनाओं का वर्णन किया, भगवान उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न हुए, उनके सामने प्रकट हुए और उनको वरदान दिया। वरदान क्या दिया कि उनको प्रजापति पंचजन की अशिकनी नामक पुत्री थी और बताया कि बहुत उर्वर है, फर्टाइल है, इसमें आप सैकड़ों हजारों संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बहुत ही जो तात्पर्य विस्तार में बता रहे हैं और प्रभुपाद सत्य की व्याख्या कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि पुरुष और स्त्री के बीच में जो संभोग की व्यवस्था की संभोग की सुविधा दी जाती है वो संभोग का प्रयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए करना चाहिए। अगर इस मैथुन क्रिया का उपयोग इंद्र तृप्ति के लिए किया जाता है तो इसको पाप माना गया है। अगर हम बाहर के जगत में किसी को ये बात बताएंगे तो उससे व्यक्ति को ये बात डाइजेस्ट नहीं होगी, वो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि केवल सेक्स लाइफ मैथुन जीवन केवल संतान की उत्पत्ति के लिए है, अपनी इंजॉयमेंट के लिए नहीं है, ये बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन ये वैदिक सत्य है, साफ साफ इसमें बताया गया है संभोग द्वारा इंद्रिय भोग में लिप्त रहने की अनुमति वैदिक सिद्धांत नहीं देते। इससे मालूम चलता है कि वैदिक संस्कृति कितनी उत्कृष्ट है। मनुष्य जीवन बहुत ही उत्तरदायित्व का जीवन है और मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्रिया दिव्य क्रिया होनी चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं अगर हमारे प्रत्येक क्रिया का उद्देश्य ट्रांसेंडेंटल नहीं है, दिव्य नहीं है, तो क्रिया करना व्यर्थ है। क्योंकि फ्रूटी एक्टिविटी अपने लाभ के लिए, अपने शरीर को आनंद देने के लिए की गई क्रिया अंततः हमें दुख देती है। हम में से कोई भी जीव दुख पाना नहीं चाहता, लेकिन अज्ञानता के कारण हम हमेशा ऐसा ही कार्य करते हैं जिससे हमें दुख मिलता है। असत्य रे सत्य करी माने, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम जिस क्रिया से हमें सुख मिलता है उसको हम दुखदायी समझते हैं और जो क्रिया अंततः हमें दुख देती है उसके पीछे हम पागल होते हैं कि शायद ये मुझे सुख दे देगी। इस संसार की सबसे बड़ी अज्ञानता ये है कि संसार में ये भ्रम है कि मैथुन इस संसार का सबसे बड़ा सुख है। सभी लोगों का यही भ्रम है और सभी जीवों को इस मैथुन के प्रति बहुत आकर्षण है ताकि ये हमें उच्चतम सुख देगा। लेकिन थोड़ी सी बुद्धि का उपयोग किया जाए तो हम जानेंगे इस संसार में प्रत्येक जीव अलग अलग योनि में मैथुन जीवन में लिप्त है और सभी के सभी दुखी हैं और सभी के सभी फ्रीली मैथुन जीवन में लिप्त हैं, चाहे पशु योनि हो, पक्षी योनि हो, कीड़े मकोड़े हो या मनुष्य हो। पाश्चात्य देशों में वुमेन्स लिबरलाइजेशन, नारी मुक्ति का आंदोलन चलता है। क्यों? ताकि नारियों को भी फ्री सेक्स की सुविधा मिले। तो मिल रही है सुविधा, तो उनसे पूछा जाए कि उसके बाद वो खुश हैं, उनका और शोषण हो रहा है और वहां पे लोग और दुखी हो रहे हैं। तो ये सब अज्ञानता के कारण जो हमारे दुखों दुखदायी जो स्थिति है उसको हम सुखदायी समझ रहे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पर बहुत ही दंगे के चोट पर स्थापित कर रहे हैं कि पुरुष और स्त्री के बीच में जो मैथुन संबंध है ये वास्तव में इसका लक्ष्य भी दिव्य है। धर्म विरुद्धो कामोस्मि, काम जो है धर्म के अगर वो विरुद्ध है तो भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं। सेक्स लाइफ, प्रभुपाद कहते हैं सेक्स लाइफ सिंफुल नहीं है, सेक्स लाइफ मैथुन जीवन पाप नहीं है, लेकिन अनलॉफुल सेक्स लाइफ निश्चित रूप से सिंफुल है। अनलॉफुल सेक्स लाइफ, इलिसिट सेक्स लाइफ वो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, मैथुन जीवन सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है। मैथुन जीवन केवल संतान उत्पत्ति के लिए है, लेकिन संतान उत्पत्ति के अलावा मैथुन जीवन में लगना वो इंद्र तृप्ति है, और इंद्र तृप्ति पाप है। इंद्र तृप्ति का अर्थ है भगवान को चैलेंज करना कि आप भोक्ता नहीं, भोक्ता मैं हूं। इंद्र तृप्ति का अर्थ है भगवान से कॉम्पिटिशन करना। क्लास में सोना भी इंद्र तृप्ति है, और क्लास में सोना पूरी गुरु परंपरा के प्रति अपराध है, कृपया करके ध्यान रखें। तो इंद्र तृप्ति करना भगवान के प्रति द्वेष व्यक्त करना है, और मैथुन करना भगवान के प्रति उच्चतम द्वेष की अभिव्यक्ति है, शत्रुता दिखाना है। क्योंकि मैथुन जीवन मतलब कि पूर्ण रूप से देहात्म चेतना में और अपने आप को भोक्ता मानना। तो एक तरफ से मनुष्य जीवन का उद्देश्य है प्रेमोपमार्थो महान, और दूसरी तरफ से अगर कोई मैथुन जीवन में लिप्त होता है वह भगवान के प्रति द्वेष की अभिव्यक्ति करता है, तो दोनों ही विरोधाभासी हैं। इसलिए इंद्र तृप्ति से मनुष्य को बचना चाहिए, और अपनी स्वेच्छा से इंद्र तृप्ति को त्यागना ये तपस्या कहलाती है। इसलिए मनुष्य जीवन तपस्या के लिए बना है, और तपस्या आध्यात्मिक जीवन का पहला सिद्धांत है। बिना तपस्या के हम आध्यात्मिक जीवन में आगे प्रगति नहीं कर सकते। तपस्या से हमें असीम शक्ति प्राप्त होती है, और तपस्या करके हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो तपस्या दिव्य उद्देश्य के लिए होनी चाहिए। तपो दिव्यम पुत्रकम ये न सत्वम शुद्ध अस्मात् पुत्र ब्रह्म सुख्यम तुम अनंतम। तपस्या से हमें अनंत कभी समाप्त न होने वाले ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है। और तपस्या छोड़कर हमें दिखने वाले छोटे मोटे सुख के पीछे भागते हैं तो बहुत बड़ा धोखा होता है, ये हमारी अज्ञानता है। इसलिए तपस्या के लिए हमें हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। कोई कह सकता है कि तपस्या करना थोड़ा मुश्किल लगता है, निश्चित रूप से तपस्या करना मुश्किल है, कि तपस्या का अर्थ ही है कठिन मुश्किल। जब तक कोई कार्य कठिन नहीं होगा तो उसमें तपस्या क्या होगी। तो तपस्या में निश्चित रूप से कठिनाई का सामना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उस कठिनाई का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो प्रभुपाद यहाँ हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस मनुष्य जीवन का हम सही उपयोग करें, और दक्ष को जो असीमित मैथुन करने की सुविधा दी गई थी तो हमें ना समझे वाह दक्ष पर क्या बड़ी कृपा हो गई है। इस संसार में बद्ध जीव ये सोचता रहता है कि कैसे मैथुन के सुख को बढ़ाए। कितने ही पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, आसपास हम देखते हैं हर जगह लोगों को ये उकसाया जा रहा है कि आप मैथुन जीवन के सुख को बढ़ाइए। तरह तरह की मेडिसिन, तरह तरह के डॉक्टर्स, और मनुष्य बेचारा पागल हुआ पड़ा है। और किसी व्यक्ति को बताया जाए कि दक्ष ने विंध्याचल पर्वत जाके ऐसी तपस्या की, भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने उसको असीमित यौन शक्ति की सुविधा दे दी, वाह क्या कृपा उसके ऊपर भगवान की। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि कहीं भक्त लोग इसमें विचलित ना हो जाए और भगवान से बोले कि ठीक है हमारे पे भी ऐसी कृपा कर दो, तो ये कृपा नहीं है। प्रभुपाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर कोई बहुत ज्यादा इंद्र तृप्ति में लिप्त हो जाता है तो उसके अंदर अपराध करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। प्रभुपाद यहां लिख रहे हैं, क्योंकि दश के अंदर पहले भी इंद्र तृप्ति की भोग की इच्छाएं थी तो उसने शिवजी के प्रति अपराध किया था, और अब इसको और सुविधा मिल गई अब फिर ये नारद मुनि के प्रति अपराध करता है। तो अगर हम ये नहीं केवल यौन संबंध में लिप्त होने से हम अपराध करेंगे, किसी भी तरह के हम अगर इंद्र तृप्ति में लिप्त हो जाते हैं, काम वास्तव की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, इंद्र तृप्ति करना पापपूर्ण है, यानी कि ज्यादा पापपूर्ण जीवन करने से हम अपराध की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमें अपराधों से तो बचना ही है, पाप से भी बचना है। और पाप करने का अर्थ है कि जो वैदिक वेदों के विरुद्ध, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य हो, यानी कि जो इंद्र तृप्ति के कार्य हो वो पाप है। तो पाप अगर करेंगे तो हमारे अंदर अपराध की प्रवृत्ति बढ़ेगी। पाप करने से अपराध की प्रवृत्ति कैसे बढ़ती है? जब हम पाप करते हैं तो अपने आप को भोक्ता मानते हैं। जब अपने आप को भोक्ता मानते हैं तो हमारी दृष्टि में वैष्णव की जो महत्व है वो कम हो जाता है। हम वैष्णव के महत्व को समझ नहीं पाते, धर्म के सिद्धांतों को के महत्व को समझ नहीं पाते, और फिर हम अपराध करते हैं। जब हम इंद्र तृप्ति में लगते हैं और भोग करते हैं तो हमारे अंदर जो भोक्ता की भावना है उससे हम दूसरों का शोषण करना शुरू करते हैं और फिर हम अपराध करते हैं। तो इसलिए भक्तशास्त्रों में बताया गया है कि हमने इस इंद्र तृप्ति को रेगुलेट करना है, लेकिन रेगुलेट करने के लिए हमें आश्रम में स्थित रहना पड़ेगा, एक रेगुलेटेड लाइफस्टाइल जीने का प्रयास करना चाहिए। तो रेगुलेटेड लाइफस्टाइल को ही वर्णाश्रम बताया गया है। वर्णाश्रम एक तरह का प्रशिक्षण व्यवस्था है, ट्रेनिंग सिस्टम है। इस ट्रेनिंग सिस्टम में बद्ध जीव की भोगने की प्रवृत्ति को सेवा की प्रवृत्ति में बदलने का प्रयास किया जाता है। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वनप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो आश्रम का अर्थ ही ये है कि नियमित जीवन जीना, और इस पूरे वर्णाश्रम जीवन का आधार है ब्रह्मचारी आश्रम। इसलिए पूर्व वैदिक काल में 5 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक प्रत्येक युवा को ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग दी जाती थी। उसके बाद वो निर्णय लेता था कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है कि आगे ब्रह्मचारी जीवन ही कंटिन्यू करना है। लेकिन आज के समाज में देखते हैं कि इस तरह कोई प्रशिक्षण सोचा भी नहीं जाता। आजकल कोई युवा बोले कि उसने ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करना है तो पूरे समाज में उत्पात मच जाता है, हाहाकार मच जाता है कि कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है, अनहोनी हो रही है पूरा समाज में। बहुत बड़ी ये अजीब सी बात है कि कोई व्यक्ति बोले कि वो ब्रह्मचारी बनना चाहता है। बोले क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, क्यों कर रहे हैं? उसको लगता है कि कोई व्यक्ति ये आउटकास्ट है। लेकिन देखा जाए वैदिक संस्कृति में तो प्रत्येक बालक को गुरुकुल में जाकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कर रहे हैं तभी आप देखिए समाज की इतनी बुरी स्थिति है। अगर किसी ने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो गृहस्थ आश्रम में आश्रम के नियमों का पालन नहीं कर सकते। गृहस्थ आश्रम में नियम क्या है कि स्त्री और पुरुष को संभोग तब करना है जब उन्होंने संतान की उत्पत्ति करनी है। अलग अलग तरीकों को अपनाकर केवल इंद्र तृप्ति के लिए संभोग करना अलाउड नहीं है, और उसके हैवी रिएक्शंस देने पड़ते हैं। नथिंग इज फ्री। आप कह सकते हैं कि वेस्ट पाश्चात्य देशों में फ्री सेक्स है, वो फ्री सेक्स नहीं है, उसके पीछे बहुत ही उनको रिएक्शन देने पड़ेंगे। और अगला जीवन निश्चित रूप से पशु का जीवन है, और इस जीवन में भी बहुत दुख होंगे। वहां पे अबॉर्शन फ्री है, और आजकल भारत में भी ये चल रहा है कि अबॉर्शन अलाउ कर दिया जाए। लेकिन जीव हत्या करना, भ्रूण की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। तो अगर हम ये प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने का, ये बात हमें समझनी चाहिए कि अगर हमने कृष्ण को प्राप्त करना है तो आंतरिक और बाहरी रूप से हर तरह से हमें इंद्र तृप्ति की इच्छा को त्यागना होगा। इंटरनली और एक्सटर्नली जितनी भी सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छाएं हैं उसको त्यागना होगा। यह संभव नहीं है कि हृदय में हम इंद्र तृप्ति की इच्छाओं को बनाए रखें और ऊपर से बोले जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, तो हम प्राप्त नहीं कर सकते। कल शिला भक्ति सिद्धांत सेवी ठाकुर महाराज का तिरुभाव दिवस था, तो भक्ति सिद्धांत सेवी ठाकुर महाराज कहते हैं कि अगर परम सत्य को जानना है तो दूषित प्रयासों से उनको नहीं जान सकते। द एब्सोल्यूट ट्रुथ कैनॉट बी नोन बाय एडल्टरेटेड एंडेवर्स। परम सत्य को जाने के लिए एडल्टरेटेड काम नहीं होना चाहिए, अनएडल्टरेटेड डिवोशनल सर्विस होनी चाहिए, अनएलॉयड डिवोशनल सर्विस होनी चाहिए। गंदगी नहीं मिली होनी चाहिए, किसी भी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए उसमें। ये गंदगी है भौतिक इच्छाएं गंदगी है, अनर्थ है, अनर्थ है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। जीवात्मा सच्चिदानंद है, पूर्ण रूप से चिन्मय है और उसकी भौतिक इच्छाएं हैं। सारी भौतिक इच्छाएं अनर्थ है, यूजलेस, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये अनर्थ, ये भौतिक इच्छाएं ही हमारे पुनर्जन्म का कारण बनती हैं और बार बार हमें दुख देते हैं। तो इसलिए इसको त्यागना होगा, बाहरी रूप से भी और आंतरिक रूप से भी, तब हम भगवतधाम जाने के योग्य बनेंगे। तो यानी कि चाहे हम किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, हमें इन भौतिक इच्छाओं से मुक्ति पानी है। ये उद्देश्य है आश्रम के जीवन का, यानी कि इंद्र तृप्ति की इच्छाओं को त्यागना है। यानी कि चाहे हम किसी भी आश्रम में हो, अगर हमने भगवत प्राप्ति करनी है तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ब्रह्मचारी आश्रम में भी जो जीव है वो ब्रह्मचारी है, जो ग्रस्त आश्रम में भी भक्त हैं वो भी ब्रह्मचर्य का पालन जब तक नहीं करेंगे वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और वानप्रस्थ और संन्यास में तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ही है। ग्रस्त आश्रम के अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करने का ये अर्थ है कि थोड़ी बहुत जो संभोग की सुविधा दी गई है, वो संभोग की सुविधा भी केवल संतान उत्पत्ति के लिए है। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन करना ज्यादा आसान है, ताकि ग्रस्त आश्रम में जाके ब्रह्मचर्य का पालन करना, क्योंकि इंद्र तृप्ति की सुविधा है लेकिन उसका उपयोग नहीं करना। तो ज्यादा तपस्या, ज्यादा सेंस कंट्रोल, और वो ज्यादा सेंस कंट्रोल तभी कर पाएगा जब उसको पहले ब्रह्मचर्य जीवन में उसने कुछ ट्रेनिंग प्राप्त की है, अन्यथा वो फेल हो जाएगा। फिर क्या देगा? प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, कहां संभव है आज के टाइम में। ये आसपास इतना पैशन है, इतना रजोगुण है, टीवी, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, हर जगह गंदगी गंदगी, उसके बीच में बोला जाए आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, संभव नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल रहना चाहिए। प्रैक्टिकल नहीं है कहके हम गुरु की आदेशों की अवज्ञा करते हैं, फिर हम क्या सोच सकते कि आगे हम भक्ति में प्रगति करेंगे। इसलिए चाहे हम किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्लीज गेट अप। ओके, तो जब हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तभी हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। और ब्रह्मचर्य जीवन का अर्थ है खुला जीवन, यानी कि नो प्राइवेसी। इसलिए देखिए वैदिक संस्कृति में जब विवाह का संस्कार होता है तो खूब जोर शोर से होता है, ताकि सबको मालूम चले, ताकि फिर कभी तोड़े ना इसको। डाइवोर्स, तलाक वेदों में नहीं लिखा गया, एक बार ही हो गया तो हो गया। उसके बाद अगर पुरुष और स्त्री को संतान की उत्पत्ति भी करनी है तो पुरुष और स्त्री गर्भाधान संस्कार करते हैं, कम से कम प्रभुपाद बताते हैं 50 माला उनको करनी चाहिए। और फिर ये कोई प्राइवेट अफेयर नहीं है, वो गुरु से आज्ञा लेते हैं और वरिष्ठ वैष्णवों का आशीर्वाद प्राप्त करके गर्भाधान संस्कार के लिए प्रयास करते हैं। नथिंग इज प्राइवेट, ये खुला जीवन है, ये है ब्रह्मचर्य इन ग्रस्त आश्रम। तो इस ढंग से जब व्यक्ति अपने इस आदर्श जीवन को जीता है तब वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो एक बार हिजोरी ने जयद्वीत स्वामी महाराज से पूछा गया कि ग्रस्त आश्रम का लक्ष्य क्या है। आप शायद जानते हो इस कौन में हिजोरी ने जयद्वीत स्वामी महाराज प्रसिद्ध हैं शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर्स के लिए। तो उनसे पूछा गया कि ग्रस्त जीवन में प्रवेश करने का लक्ष्य क्या है, तो उन्होंने केवल 3 शब्द में उत्तर दिया, टू गिव इट अप। ग्रस्त आश्रम में व्यक्ति को प्रवेश करना चाहिए केवल त्यागने के लिए, और कोई इसका उद्देश्य नहीं है। ग्रस्त आश्रम का यह उद्देश्य नहीं है कि दादी माँ मरने से पहले भी बोल रही है कि पोते को घोड़ी पर चढ़े हुए देख लू, है ना। अगर वो हो जाए तो बड़ी बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसी सौभाग्यशाली बूढ़ी तो कहीं मिली नहीं बुढ़िया कि पोते का विवाह देख लिया, और क्या चाहिए बताओ। नहीं है ये कि तब तक पड़े रहे जब तक सब पोतों ने दुर्गति ना कर दे बूढ़े व्यक्ति की, वो छोड़ता ही नहीं है। नो, गिव इट अप, गिव इट अप। ये ट्रांजिएंट आश्रम है, अस्थाई आश्रम है, ज्यादा से ज्यादा 20-25 साल बस, गिव इट अप। और कोई ब्रह्मचारी अगर ग्रस्त आश्रम में जाता भी है, जा सकता है, फिर उसने ब्रह्मचारी का पालन किया, उसके बाद वो ग्रस्त आश्रम में प्रवेश कर सकता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई ब्रह्मचारी था अभी, उसने कुछ समय के बाद ये लाल वस्त्र उतार के ग्रस्त आश्रम में प्रवेश कर गया तो उसकी बेइज्जती हो गई, सारा उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, देखो 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 इसका पतन हो गया। नहीं, उसने एक निर्णय लिया है कि अभी मैं ब्रह्मचार्य आश्रम में था, अब वो मिथ्याचार्य नहीं बनना चाहता, अगर उसके अंदर कुछ इच्छा है तो निश्चित रूप से वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। जिस भी आश्रम में रहे उस आश्रम के नियमों का दृढ़ता से पालन करे, ये ज्यादा आवश्यक है। ये सोसाइटी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर आश्रम कॉन्शियसनेस नहीं है कि हम झूठा आश्रम अपने दिखाए रखें। जिस भी आश्रम में है, अगर ब्रह्मचारी आश्रम है तो ब्रह्मचारी आश्रम के नियमों का सख्ती से पालन करें, गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम के नियमों का सख्ती से पालन करें। होता क्या है, हम लोग भक्ति की आड़ में इंद्रतृप्ति करते हैं, बुरा ना माने तो। ब्रह्मचारी आश्रम में होंगे तो ब्रह्मचारी आश्रम में हम रहते हैं ग्रस्थों की तरह, थोड़ी बहुत इंद्रतृप्ति की सुविधा ढूंढते हैं, यहां से हो जाए यहां से हो जाए। ये केवल मैथुन करना ही इंद्रतृप्ति नहीं है, मैथुन इंद्रतृप्ति का एक तरीका है, इंद्रतृप्ति के कितने ही तरीके हम सब जानते ही हैं, है ना। तो वो ना करके हम तरह तरह से इंद्रतृप्ति करने की सुविधाएं ढूंढते हैं, और फिर क्योंकि मैं मैथुन नहीं कर रहा तो मैंने लाल बस नहीं। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर रेगुलेटेड सेंस एंजॉयमेंट है उससे भी अटैच नहीं होना चाहिए। क्यों प्रभुपाद कहते हैं, देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ एक्सीडेंट इवन ऑन द रॉयल रोड्स, राजमार्ग पर भी कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो रेगुलेटेड सेंस एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं और उसमें भी अटैच्ड हैं। मुझे प्रसाद खाना बहुत अच्छा लगता है, प्रसाद की तो प्रभुपाद मतलब खूब खाओ खूब खाओ। अरे रघुनाथ दास गोस्वामी को देखें और खुद को देखें, मतलब कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने जीवा पे कभी भी कोई ऐसी वस्तु नहीं रखी जो केवल इंद्रतृप्ति के लिए हो। गोस्वामी गण हमारे लिए महाजन है। प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा कॉन्शियस होने से पहले गोस्वामी कॉन्शियस बनी है, और गोस्वामियों के जीवन की स्टडी करके, चाहे आप गृहस्थ आश्रम है, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम है, चाहे आप पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, गोस्वामियों के जीवन को स्टडी कर उसके अनुसार अपने जीवन को जिए। हमारा जीवन बहुत ही सरल और बहुत ही विनम्रता पर आधारित होना चाहिए। ये भक्ति जो है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, बहुत ही सूक्ष्म है और जेन्युइन साइंस है, क्योंकि धोखेबाजी तो है नहीं, दिखावे की साइंस भी नहीं है। कृष्ण वास्तव में परम सत्य है और निश्चित रूप से एक व्यक्ति है जो सब प्रकृति के तीन गुणों से परे हैं। तो अगर हमें कृष्ण को प्राप्त करना है तो हमारे प्रयास भी बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए। तो गोस्वामी के जीवन को, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामियों के जीवन को हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, उन पे मनन करना चाहिए और अपना जीवन उस पे आधारित करना चाहिए। तो हम लोग क्या ब्रह्मचारी आश्रम में बुलाना माने तो हम इंद्रतृप्ति की सुविधाएं ढूंढते हैं, केवल मैथुन नहीं करे तो क्या हो गया, मानसिक रूप से करते हैं। केवल स्त्री की तरफ किसी को देखना भी गलत दृष्टि से वो एक सेक्स माना गया है, बातचीत करना भी, इंटीमेट टॉक करना भी मैथुन माना गया है। तभी चैतन्य महाप्रभु ने छोटा हरिदास का तिरस्कार कर दिया था। माधवी माता एक वृद्ध महिला थी, थोड़ी सी उसने इंटीमेट टॉक की, महाप्रभु के लिए चावल लेने गए थे, महाप्रभु कहते हैं गेट आउट गेट आउट। महाप्रभु वैसे त्रिनादेवी सुनिचेन है कि आप उन्होंने पालन करते थे और बहुत ही विनम्र व्यवहार करते थे, लेकिन हरिदास ठाकुर के, छोटा हरिदास के प्रति उन्होंने एक वज्रपात की तरह व्यवहार किया। तो हम ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर भी इंद्रतृप्ति की सुविधा ढूंढते हैं, वो गलत है। और गृहस्थ आश्रम माने के बाद हम ब्रह्मचारी की तरह व्यवहार करते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे ही रहने दो। तो फिर गृहस्थ आश्रम में अगर आए हैं तो एक एक छोटी से छोटी जिम्मेवारी को हमें सही ढंग से निभाना चाहिए। ये आश्रम जीवन का अर्थ है कि आश्रम की जिम्मेवारियों को निभाएंगे तभी हमें कुछ साक्षात्कार होगा कि ये भौतिक जीवन कठिन जीवन है, असंभव जीवन है, ये मेरे लिए असली जीवन नहीं है। हम कठिनाइयों को अवॉइड करने के लिए शॉर्टकट मारते हैं और फिर ये आश्रम जीवन नहीं है, तभी कोई साक्षात्कार नहीं होता और हमारा हृदय कठोर हो जाता है। और हृदय को नम्र करना है और विनीत होना है, अपने आप को तुच्छ पाना है, तो हमें हर आश्रम की जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाना होगा। कोई ब्रह्मचारी आश्रम में है तो उसको पूर्ण रूप से निर्भर, एक छोटी से छोटी सुविधा के लिए पूर्ण रूप से निर्भर रहना पड़ेगा, तभी वो विनीत बनेगा। अगर कोई गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम की सारी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा, गृहस्थ आश्रम को सारे तीन आश्रमों को मेंटेन करना पड़ेगा, उसके लिए उनको तपस्या करनी पड़ेगी। गृहस्थ आश्रम में जो बैंक बैलेंस है वो केवल सन्यासियों और ब्रह्मचारियों के लिए है, अपने भोग के लिए नहीं है। हर सुविधा केवल दूसरों की सेवा करने के लिए है। तो ये सख्ती से जब सारे नियमों को निभाएंगे और साथ ही साथ बच्चों का सही ढंग से पालन पोषण करना, स्त्री का पूरा ख्याल रखना, काम धंधे को सही ढंग से करना, और फिर भक्ति के नियमों का भी पालन करना बहुत कठिनाई है। जब सारे नियमों का पालन करेंगे, तपस्या करेंगे, तब हमारा शुद्धिकरण होगा। शॉर्टकट्स मारेंगे, गृहस्थ आश्रम आगे कई भक्त हमारे पास आते हैं कि छोड़ के आ गया जी, ये तो पत्नी तो शो मचाती रहती है, रहने समस्या है, चिक 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 लगी रहती है, यहाँ आके बड़ी शांति मिलती है। जो चिक 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 है ना, वो आपका आपके लिए तपस्या है, चाहिए। ये कोई बोला बात नहीं है, एस्केप करके यहाँ आ गए, राहत मिल गई यहाँ पे, यहाँ तो राहत मिलेगी। यहाँ पर बड़े विनम्र भक्त बने, हाँ जी प्रभु जी, यहाँ पे सब आगे का पालन कर रहे हैं, वहां पे चिक चिक है, मैं कुछ तो मालूम चले घर में कोई काम भी नहीं करते, बिजनेस भी नहीं करते, बस मैं जा रहा हूँ मंदिर जा रहा हूँ। नहीं, भगवान उसे प्रसन्न होने वाले नहीं है। अगर हम गृहस्थ आश्रम है, ग्रहण का पालन करें, अगर ब्रह्मचारी आश्रम में थोड़े इंद्र तृप्ति ढूंढ रहे हैं तो गलत है, विनीत जीवन जीना है। कृष्ण कॉन्शियस में दिव्य आनंद चाहिए, तो अगर दिव्य आनंद प्राप्त करना है तो हिजोलीनेस भक्ति का स्वामी महाराज कहते हैं कि अगर हम बिना सेवा की भावना को विकसित किए, बिना अनुशासन का पालन किए, बिना इंद्र तृप्ति को त्यागे, दिव्य आनंद को खोज रहे हैं तो हम सहिज्या हैं। यानी कि अगर हमें दिव्य आनंद चाहिए तो सेवा की भावना को विकसित करना होगा, इंद्र तृप्ति को त्यागना होगा और अपने आप को अनुशासित करना पड़ेगा। ये तीनों कार्य कठिन हैं, हम करना नहीं चाहते, लेजीनेस, पुरानी आदतें, तो हम लोग ऐसे सहिज्यों की तरह सोचते हैं कि हमें दिव्य आनंद प्राप्त हो गया, तो इतना आसान नहीं है। तो आश्रम जीवन जीना अति आवश्यक है, और आश्रम जीवन में कभी भी ब्रह्मचारी आश्रम से कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में जा सकता है, लेकिन गृहस्थ आश्रम से उसको वानप्रस्थ में जाना ही चाहिए। ये चॉइस नहीं है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, ब्रह्मचारी आश्रम में चॉइस है कि वो कंटिन्यू कर ले या गृहस्थ आश्रम में जाए, लेकिन गृहस्थ आश्रम वाले व्यक्ति को वानप्रस्थ में जाना ही चाहिए, वहां पे रुका नहीं रहना चाहिए, ये एक फ्लो में रहे कि कुछ समय के उसको जीवन का साक्षात्कार हो गया, फिर वो आगे बढ़े। तो इस ढंग से हमें अपने जीवन को जीना चाहिए, और अगर हम इन आश्रम का नियमों का पालन नहीं करते हैं और ऐसी संतान की उत्पत्ति करते हैं तो संतान क्या होगी, वर्ण संकर होगी, और वर्ण संकर की उत्पत्ति करना सबसे बड़ी हिंसा है। वर्ण संकर उत्पन्न हो गया बिना संस्कारों के, वो समाज में उत्पाद ही मचाएगा, और वर्ण संकर उत्पन्न करने की जिम्मेवारी हमारे पर होती है, क्योंकि हम हमारा जीवन संस्कारों पर आधारित नहीं होता, अज्ञानता में होता है। तो इसलिए जो भी लोग इस कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी से जुड़े हैं, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि इस ज्ञान को अच्छे ढंग से समझें और इसको अपने जीवन में उतारें और इसका एक हम उदाहरण बने समाज के लिए। हम लोग इस ज्ञान को पढ़ते हैं, ये बात हमने पहली बार तो सुनी नहीं और पढ़ी नहीं, लेकिन इसको अपने जीवन में कोई उतारने का प्रयास नहीं कर रहा, तो इससे ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी कहलाती है, और फिर हम इससे भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम ये सही ढंग से अगर हम आश्रमों का वर्णन देखें, 11वें स्कंद में बताया गया भागवतम में, ब्रह्मचार्य वानप्रस्थ का जीवन कठिन तपस्या है, उसको घर छोड़कर वन में जाना चाहिए, वृक्ष की छाल डालनी चाहिए, कुछ खाना नहीं चाहिए, केश को कंघी नहीं करनी चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए, जटाएं उगानी चाहिए, तो बहुत कठिन जीवन है जो कि कलयुग में संभव नहीं है। कलयुग में अगर केवल हम तपस्या ही करते रहेंगे, सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए हैं और उन्होंने संकीर्तन आंदोलन हमें दिया है। तो जब हम संकीर्तन आंदोलन में भाग लेते हैं और साथ ही साथ इंद्र तृप्ति से बचने का प्रयास करते हैं, तब हम आश्रम का सही ढंग से पालन कर पाते हैं। अगर हम संकीर्तन आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं और केवल तपस्या करेंगे तो हमारा हृदय कठोर हो जाएगा। तो इसलिए ये संकीर्तन यज्ञ इतना आसान है इसका पालन करना, और इससे क्या होगा कि हम आश्रम में स्थित रह पाएंगे, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम है चाहे गृहस्थ आश्रम है। तो हर आश्रम में स्थित रहने का नियम यही है कि 24 घंटे में हमारे पास कम से कम 30 घंटे की सेवा होनी चाहिए, 30 घंटे की सेवा होनी चाहिए ताकि हम लगे रहें, हमारे पास कुछ और सोचने के लिए समय ही ना हो, हमारी सारी एंग्जाइटी ये हो, सारी चिंता ये हो कि गुरु की आज्ञा का कैसे पालन करना है, बस हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी लाइफ की ये हो कि कैसे गुरु की आज्ञा का पालन करना है, फिर अपने आप हम सारे के सारे आश्रम के नियमों का पालन करेंगे और फिर हम अपने आप दिव्य आनंद को प्राप्त करेंगे। जब ऐसा नहीं होता है, हमारे पास गैप होता है, हमारा हम मन के स्तर से सोचते हैं, तो फिर हम इंद्र तृप्ति के बारे में सोचते हैं और फिर हम नियमों को तोड़ते हैं और फिर हम लोग बहुत दुखी होते हैं। इंद्र तृप्ति मतलब दुख, इंद्र तृप्ति सुख नहीं है। यही संस्पर्श जा भोगा दुख योन्या एवते आदि अंत अंत कौनते नातेषु रमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी इंद्र तृप्ति में नहीं लगेंगे। दुख योन्या, ये दुख की उत्पत्ति करना है, हम स्वयं अपने दुखों को जन्म देते हैं इंद्र तृप्ति कर। ओके? और इंद्र तृप्ति से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आश्रम के जीवन में जिए। और आश्रम जीवन का सबसे आसान तरीका कलयुग में है कि संकीर्तन यज्ञ में पूरे उत्साह के साथ हम भाग लें और संकीर्तन यज्ञ जब गुरु के आदेशों के अनुसार हम आश्रम जीवन को जिएंगे तो निश्चित रूप से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। नियमित जीवन जीने का अर्थ है सतोगुण में आना। नियमित जीवन जीने का अर्थ है कि हमेशा कृष्ण का स्मरण करना और कभी भी कृष्ण को नहीं भूलना। आप देखिए किस ढंग से हम नियमित जीवन जीते हैं। अगर हमने प्रसाद भी पाना है तो उससे पहले प्रार्थना है। खाना सबको अच्छा लगता है, खाइए। इसको कैसे नियमित किया जा रहा है, कैसे दिव्य बनाया जा रहा है, प्रसाद पाके। अब प्रसाद पाने से पहले भी हमें ध्यान पूर्वक महाप्रसाद गोविंद प्रार्थना बोलनी चाहिए। मैथुन में करना है तो करिए, इससे पहले गर्भाधान संस्कार करिए। तो हर इंद्र तृप्ति की सुविधा को कैसे दिव्य कार्य बनाया जा रहा है कि उसे गुरु के आदर्शों के अनुसार किया जाए और हमेशा हम कभी भी किसी भी अवस्था में कृष्ण को ना भूलें। ये है जीवन का लक्ष्य। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, टिप्पणी है? वानप्रस्थ की ड्यूटी और सावधानियों पर अच्छा प्रश्न है। वानप्रस्थ की जो ड्यूटीज इस समय ये हैं कि आप अब कहीं वन तो रहे नहीं, है ना, वन बहुत कम रहे हैं, तो ये प्रभुपाद ने बताया कि जो मंदिर हैं ये वैकुंठ हैं, तो यहाँ पे हमें पूर्ण रूप से सेवा करनी चाहिए। गुरु से दीक्षा प्राप्त करके गुरु के आदेशों के अनुसार सेवा करें और भोग से संभोग से बिल्कुल हम दूर रहें और पूरा जीवन मन वाणी और कर्म से गुरु की आज्ञा का पालन करें। संकीर्तन यज्ञ में सब कुछ बहुत आसान हो गया है, अन्यथा जो शास्त्रों में पहले वेदों में बताया गया वानप्रस्थ की जो ड्यूटीज हैं वो बहुत ही टफ है, उसका हम पालन भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन वानप्रस्थ जीवन तपस्या के लिए। संन्यास का तो अगर हम भगवान गीता में बता रहे हैं गेश अनित सन्यासी ना यशोष्टि ना कांक्षति, कि अगर हम पूर्ण रूप से अगर पालन कर रहे हैं तो वो सन्यास के समान ही है। केवल बाहरी वेश पे हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। किसने बताया आपको, किसने बताया आपको 90% चांसेस है? किसने बताया, किसने सुना? ऐसे ऐसे अफवाहों पे मत जाइए, साइंटिफिक बात कीजिए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, तो आप सब भक्तों को हाँ जी बताए आज राइट एज एज अर्ली एज पॉसिबल, जिम्मेदारियों को निपटा के इंटेलिजेंटली हम जीवन जिए। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चों को छोड़कर आ गए वानप्रस्थ हो गए, है ना। अच्छा नहीं, मतलब कि जितना जल्दी हो सके बच्चों को हम सेटल करके, सेटल मीन्स अब सेटल भी प्रभुपाद बोलते हैं स्पिरिचुअल फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। स्पिरिचुअल फैमिली प्लानिंग क्या है कि संतान तब तक उत्पन्न ना करो जब तक आपको अपने आप आत्मविश्वास ना हो कि आप उनकी आध्यात्मिक देखभाल कर पाएंगे। मत करो, अगर कर रहे हैं संतान उत्पत्ति उनकी पूरी जिम्मेवारी लो। तो जब आपको लगता है कि वह आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि से सेटल है, लीव देम एज अर्ली एज पॉसिबल। आजकल तो कोई 100 साल तो कोई जिएगा नहीं, 40, 42, 45 जितना जल्दी हो सके करो। हाँ जी, आप देख रहे करेंगे? नहीं, कब तक करेंगे देख रहे? पोते खिलाते रहेंगे, क्या नहीं करते हैं, कब तक? है ना, कर्दम मुनि थे, वर्णन आया है, कर्दम मुनि ने माता देहोति गर्भ में संतान उत्पन्न की, भगवान कपिल ने स्वयं उनके घर में जन्म लिया, स्वयं भगवान उनके पुत्र है, लेकिन वो अपने पुत्र को छोड़कर वन में जा रहे हैं। इतना आवश्यक है, घर छोड़ना इतना आवश्यक है, क्योंकि मोह है, इसको जब तक नहीं छोड़ेंगे हम कमजोर रहेंगे। आसक्ति से, अटैचमेंट से हमारे में कमजोरी आती है, और अनासक्ति से, डिटैचमेंट से हमें शक्ति मिलती है। ये काटना पड़ेगा, वानप्रस्थ में इसको काटना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। कर्दम मुनि ने छोड़ा। राजा प्राचीन भरि जो कि बिल्कुल कर्मकांडी व्यक्ति थे, आसक्त व्यक्ति थे, नारद मुनि के पास गए, उनको उपदेश दिया। उनके सारे बेटों को उन्होंने पहले ही तपस्या के लिए भेजा हुआ था, कोई भी पीछे राजे देखने के लिए नहीं था, इतना इंपॉर्टेंट था कि इतनी लेट हो गया, मैं छोड़ दिया। राजे की देखभाल करने के लिए ना पुत्र है ना पिता है, बोले मैं बूढ़ा हो गया, मैं अभी तक क्यों बैठूं यहां पे, छोड़ दिया। ठीक है, नहीं ठीक है ना। और एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें कि जैसे राजा प्राचीन भरि ने पचेतस को भेजा कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले जाके तपस्या करो, आगे जाके और संतानों की उत्पन्न करेंगे, 60,000 पुत्र उत्पन्न करेंगे, 10,000 उत्पन्न करेंगे, 10,000 और 1,000 उत्पन्न करेंगे, उनको भी तपस्या के लिए भेजेंगे, गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले आप तपस्या करो। क्यों? गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले तपस्या करनी अति आवश्यक है, ताकि हम परम सत्य को जान सकें, तो गृहस्थ आश्रम में हम सही ढंग से नियमों का पालन कर सके। तो आजकल इस भौतिक जगत में तपस्या शब्द कहीं रह ही नहीं गया है ना, और इसलिए हम सब जानते हैं कि जीवन सबका कितना दुखमय है। श्रीला प्रभुपाद जब अमेरिका में गए थे तो हिप्पीज, जो कि उनका अवैध यौन संबंध तो उनका लाइफस्टाइल था, यानी कि फैशन था, बिना उसके जीवन सोच नहीं सकते थे कि बिना से कोई जीवन है, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करके आप देख सकते हैं संकीर्तन यज्ञ में भाग लेके कैसे वो अपने इस कमजोरी से ऊपर उठ सके। इससे हम मन चाहता कि संकीर्तन यज्ञ में और गुरु के आदेशों में कितनी शक्ति है, प्रभुपाद और हिप्पीज की एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग अपने आप को कमजोर ना समझे, हम कमजोर हैं, लेकिन गुरु की आज्ञा में, गुरु की परंपरा की कृपा में, संकीर्तन यज्ञ में बहुत शक्ति है। तो अपनी सारी के सारी कमजोरियों को हम पार कर सकते हैं अगर हम आश्रम में पूर्ण रूप से आश्रित होकर, नियमों पर आश्रित होकर गुरु के आज्ञा का हम पालन करें। ठीक है, तो सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथा श्रीमद भागवतम की, जगत गुरु शीला प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद।